ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति श्लोक संख्या 7। गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोप गोभी अलंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यांश कंस संविग्ना विवरेषु वसन्तिः। गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोप गोभी अलंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यांश कंस संविग्नः विवरेषु वसन्तिः। गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोप गोपी अलंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यांश कंस संविग्ना विवरेषु वसन्तिः। गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोप गोभी अलंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते माताजी। गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोप गोभी अलंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य नंद गोकुले अन्यांश कंस संविग्ना विवरेषु वसन्तिः।
शब्दार्थ गच्छ अब जाओ, देवी हे समस्त जगत की पूज्या, व्रजम ब्रज भूमि में, भद्रे हे समस्त जीवों का कल्याण करने वाली, गोप गोभी ग्वालों तथा गायों के साथ, अलंकृतम अलंकृत सज्जित, रोहिणी रोहिणी वसुदेवस्य कृष्ण के पिता वसुदेव की, भार्या पत्नियों में से एक, आस्ते रह रही है। नंद गोकुले गोकुल नाम से विख्यात महाराज नंद के राज्य में जहां लाखों गायें पाली जाती हैं, अन्यांश तथा अन्य पत्नियां कंस संविग्नः कंस के भय से विवरेषु एकांत स्थानों में वसंती रह रही हैं ही निःसंदेह। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम ब्रज जाओ जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं। उस सुंदर प्रदेश में जहां अनेक गौवें निवास करती हैं, वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहां जाओ। आवृत्ति करिए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रज जाओ जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं। उस सुंदर प्रदेश में जहां अनेक गौवें निवास करती हैं, वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहां जाओ। तात्पर्य, राजा नंद का आवास नंद गोकुल स्वयं अत्यंत सुंदर था, और जब योग माया को वहां जाकर भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया तो वह और भी सुंदर था, सुरक्षित हो गया। चूंकि योग माया में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी, इसलिए उसे नंद गोकुल के यहाँ जाने का आदेश दिया गया। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन श्लाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार लेने के कई कारण होते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है असुरों के अत्याचार से अपने भक्तों की सुरक्षा प्रदान करना। गीता में भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान के इस भौतिक जगत में प्रकट होने के कई कारण हैं, लेकिन उसमें भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए इस जगत में आते हैं, उनको अभय प्रदान करने के लिए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को अभी यही कथा श्रवण कराने जा रहे हैं कि किस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान का इस संसार में प्रकट होना तथा इस संसार से अप्रकट होना और इस संसार में आकर कर्म करना समान लोगों के जन्म लेने और इस संसार से जाने और संसार में कर्म करने से अलग होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं विवेति तत्वतः। तो भगवान का जन्म और भगवान का कर्म हमारी और आपकी तरह नहीं होता है। भगवान का जन्म भगवान का कर्म दिव्य होता है और सुखदेव गोस्वामी अभी महाराज परीक्षित को यही प्रसंग श्रवण करा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान इस संसार में प्रकट होने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। तो इस प्रसंग में हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं कि कैसे जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, 6 पुत्रों का वध करने के पश्चात देवकी गर्भ में जब 7वां पुत्र आया तो 7वें पुत्र के आगमन के साथ ही यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हर्ष शोक विवर्धना। जब देवकी गर्भ में 7वां पुत्र आ गया, 7वें गर्भ से हो गई देवकी, तो उसको बहुत हर्ष की अनुभूति हुई। पहले तो क्यों हर्ष की अनुभूति हुई, इसी श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं, अभी तक 6 पुत्र मारे गए हैं, 6 पुत्रों के मारे जाने के वर्णन में ये बात नहीं आई कि देवकी कभी हर्ष हुआ। हर्ष की अनुभूति इसलिए हुई क्योंकि अभी जो 6 पुत्र मारे गए हैं और अभी जो 7वां गर्भ आया है, ये 7वें गर्भ में और 6 पुत्र जो मारे गए हैं उन दोनों पुत्रों में बड़ा अंतर है। हालांकि जो पुत्र मारे गए वो भी कोई सामान्य पुत्र नहीं थे, उनका कथा आप लोग श्रवण कर चुके हैं किस प्रकार ब्राह्मण के श्राप द्वारा वो लोग को ऐसे ही वध किए जाना था। कंस ने ऐसा आशीर्वाद दिया था, तो भी पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं थे। लेकिन ये जो 7वां गर्भ है ये कौन है, सप्तमो वैष्णवम धाम यमन अनंत प्रचक्षते। ये जो 7वां गर्भ है ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये सप्तमो वैष्णवम धामम, वैष्णवम धाम मतलब ये साक्षात भगवान का अंश स्वरूप है, भगवान का श्वांस है। और ऋषि मुनि लोग इस अंश को, इस श्वांस को यम अनंत प्रचक्षते, अनंत नाम से जानते हैं। और चूंकि ये डायरेक्ट भगवान के द्वितीय स्वरूप कहे जाते हैं, भगवान के अंश कहे जाते हैं, इसलिए ये इनका भी जो अस्तर है ये दिव्य है। अभी जो गर्भ आया है देवकी के गर्भ में प्रकट हुआ है, ये भी एक दिव्य बालक है। इस बालक के प्रकट होने के कारण देवकी को एक हर्ष की अनुभूति हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सामान्य बालक नहीं, साक्षात भगवान ही है बलराम जी। हर्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी देवकी के अंदर वात्सल्य भाव आ रहा है कि अभी ये बालक प्रकट होगा, इसको लालन पालन करने का उनको अवसर मिलेगा, गोद में खिलाने का अवसर मिलेगा। वात्सल्य रक्ष की अनुभूति करके देवकी को आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन तुरंत भी साथ में बोल रहे हैं हर्ष शोक विवर्धना, कि हर्ष तो हुआ लेकिन तत्पश्चात तुरंत शोक भी हुआ। शोक किस लिए? क्योंकि तुरंत इनको आभास हुआ कि हाय हाय अभी कंस आएगा और इनको भी मार देगा, इस पुत्र को भी मार देगा। और हर्ष होने के कारण एक आचार्य बता रहे हैं कि इसलिए देवकी को हर्ष हो रहा है क्योंकि देवकी ये सोचकर हर्ष में आप्लावित हो रही है कि अभी दुख के दिन गए, बहुत दुख के दिन चले गए, थोड़ा दिन और बाकी है। क्योंकि अभी 7वां गर्भ है और 8वें गर्भ की भविष्यवाणी हुई कि 8वां गर्भ आएगा और वो कंस का वध करेगा, तो अभी बहुत कम दिन बाकी है दुख का। क्योंकि अभी इस पुत्र के प्रकट होने के बाद तुरंत ही अभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और कंस के अत्याचार से समस्त जीवों को मुक्त करेंगे, हम लोगों को भी दुख से मुक्त करेंगे। तो ऐसा अनुभूति करके देवकी को दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन तुरंत शोक भी हो रहा है क्योंकि वात्सल रस की अनुभूति के कारण कि अभी कंस आएगा और इस पुत्र का भी वध कर देगा। तो इस प्रकार बलराम तत्व की व्याख्या की गई थोड़ी, कि जो 7वां गर्भ है ये भगवान से अंश, भगवान का अंश है, भगवान का द्वितीय देह है और भगवान के आश्रय स्वरूप हैं। तहार द्वितीय देह श्री बलराम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम, ये बलराम जी हैं, ये अनंत हैं, ये संकर्षण हैं। और इसलिए इस बालक के प्रकट होने के कारण, गर्भ में प्रकट होने के कारण देवकी माता को दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है और साथ में शोक भी हो रहा है। कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री श्री राधा रास बिहारी श्री सीताराम श्री गौड़ श्री प्रभुपाद जी की जय। तो सुखदेव गोस्वामी आगे के श्लोक में कहते हैं, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम यदुनाम निजनाथानाम योग मायाम समादिशन। भगवान अपि, यद्यपि कृष्ण स्वयं भगवान हैं, इसमें कई सारे भगवान के नाम आए हैं। भगवान अपि विश्वात्मा यदुनाम निजनाथा नाम, भगवान कई सारे नाम हैं, कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी गोवर्धनधारी, ऐसे हजारों लाखों भगवान के नाम हैं। और भगवान के सभी नाम दिव्य हैं। महाराज कुलशेखर मुकुंदमाला स्त्रोत में भगवान के अनेक नामों को याद करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी अपनी टीका में लिखते हैं श्लोक नंबर 2 के तात्पर्य में कि भगवान के कई सारे नाम हैं और ये सभी नाम भगवान की समान ही सर्वशक्तिशाली हैं। भगवान के कई सारे नाम हैं और कई सारे नाम सर्वशक्तिशाली हैं, सभी नाम दिव्य हैं, लेकिन एक विशेष अंतर है कई सारे नामों में कि हर नामों को, भगवान के कई सारे नाम हैं और हर नामों को लेने में अलग अलग दिव्य रस की अनुभूति होती है। भगवान के कई सारे नाम हैं, हर नाम लेने में एक जैसा रस का अनुभूति नहीं होगा। जैसे भगवान का एक नाम है कृष्ण, तो कृष्ण नाम क्यों है, क्योंकि ये सर्वाकर्षक है। हाँ, या गोपियां कभी भी भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण कह के नहीं बुलाती थी, गोपियों का एक प्रिय नाम था कृष्ण के लिए, क्या, कान्हा या कन्हैया, क्योंकि उनको एक अनुभूति, एक दिव्य रस की अनुभूति मिलती थी वो नाम लेने पे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के कई सारे नाम हैं, कई सारे नाम में उतनी समान शक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान के अनेक अनेक दिव्य नामों के कीर्तन से अनेक अनेक रस की अनुभूति होती है। इसलिए अनेक अनेक भक्त भगवान का अनेक अनेक नाम लेते हैं और कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के कई सारे नाम होते हैं, कुछ नाम भगवान के लीला से संबंधित होते हैं, कुछ नाम भगवान के ऐश्वर्य से संबंधित होते हैं और कुछ नाम भगवान के उनके भक्तों के साथ अंतरंग संबंध होने के कारण पड़ते हैं। और जो नाम भगवान के उनके अंतरंग भक्तों के संबंध के कारण पड़ते हैं वो नाम भगवान को अत्यंत प्रिय लगते हैं। अपने अपने रुचि के, अपने अपने रस के अनुसार हम भगवान का कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन भगवान को कौन सा नाम सुनना अच्छा लगता है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो नाम उनके अंतरंग भक्तों के संबंध के कारण पड़ते हैं भगवान को, वो नाम बड़े प्रिय लगते हैं। यदि कोई भगवान को देवकी नंदन बोलता है, नंद नंदन बोलता है, दशरथ नंदन बोलता है, जानकी वल्लभ बोलता है, राधा राधानाथ बोलता है, राधा कान बोलता है, गिरिवरधारी बोलता है, तो भगवान को ये सब नाम सुनना पसंद लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य बहुत बड़ा है और भगवान को लोग प्रणाम करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, लेकिन ये सब ऐसे संबंध के नाम हैं जहां पर भगवान अपने भक्तों के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं। भगवान खुद इन भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। हाँ, जैसे हम लीला में देखते हैं कि नंद बाबा बोलते हैं, लाला मेरा चप्पल उठा कर लेकर आओ, मेरा खड़ाऊ लेकर आओ, और भगवान जाते हैं छोटे छोटे पैरों से, अपने छोटे छोटे हाथों से नंद बाबा का खड़ाऊ उठाते हैं, चप्पल उठाते हैं, उसको सर पे लगते हैं, क्योंकि वजन है, हाथ पे लेकर नहीं आ सकते हैं तो सर पे लेकर आते हैं। तो ऐसे प्रेमी भक्तों के हाथ में भगवान बिक गए रहते हैं। और जब कोई भक्त ऐसे भगवान का नाम लेता है, इन सब नामों से जोड़कर भगवान के नाम को देखता है, जोड़ता है, तो भगवान को अति आनंद की अनुभूति होती है, भगवान को वो नाम बहुत अच्छा लगता है। इसलिए महाराज कुलशेखर जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो पहले श्लोक में भगवान के ऐश्वर्य को प्रधानता देते हैं, जो ऐश्वर्य संबंधित नाम है, जहां पर वो बोलते हैं श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नाग शयनेति जगन निवासो त्यालापिनम प्रतिदिनम कुरु मा मुकुंद। इसमें जो नाम है भगवान बोलते श्री वल्लभेति, जो लक्ष्मी जी के अत्यंत प्रिय हैं, या लक्ष्मी जी जहाँ आश्रय लेकर रहती हैं, वर देती जो वर देने में सक्षम है, दया परेति जो भक्तों पर दया करते हैं, भक्त प्रियति जो भक्तों को बहुत प्रिय हैं, भव लुंठन को विदेति जो जीवों को भव रोग से मुक्ति प्रदान करते हैं, भव रोग हर लेते हैं जीवों का, नाथेति जो जगत के नाथ है, नागसनेति जो नाग पर, शेष नाग पर निवास करते हैं, वहां पर आश्रय लेते हैं, उस पर आराम करते हैं, जगन निवासो जिनमें सारा जगत आश्रय लेता है या जो सारे जगत के अधिपति हैं, मालिक हैं, त्याला पिनम प्रतिदिनम कुरुमाम मुकुंदह, ऐस कृपा करके ऐसे भगवान मुझे अपने नामों का निरंतर कीर्तन करने दें। तो भगवान कितने सारे दिव्य नाम उन्होंने गिनाए। ठीक दूसरे श्लोक में जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो इसमें वैसे ही नाम रखते हैं जो भगवान के अनन्य भक्तों के संबंध के कारण भगवान के नाम पढ़ते हैं। जहां पर कुलशेखर महाराज कहते हैं जय तु देवो देवकी नंदनोयम, जय तु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीप, जय तु मेघ श्यामल कोमलांगो, जय तु पृथ्वी भार नासो मुकुंद। जय तु देवो देवकी नंदनोयम, जो देवकी के पुत्र हैं और जो विष्णु वंश प्रदीप, जो विष्णु वंश में उत्पन्न हुए हैं, जिनके शरीर की कांति नमीन बादल के समान है, ऐसे भगवान मुकुंद जो पृथ्वी के भार को हरने वाले हैं, उनको मेरा प्रणाम है। और इसी श्लोक की टीपका में प्रभुपाद जी अपने भावों को व्यक्त करते हैं कि भगवान को ये सब नाम अत्यंत प्रिय होते हैं जो भगवान के अनन्य भक्तों के संबंध में जोड़कर देखे जाते हैं, तो भगवान को सब नाम सुनना पसंद लगता है, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्यमयी सारे नाम है। और प्रायः जब भगवान के पास सब लोग जाते हैं तो दासत्व भाव में भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की विनती करते हैं, भगवान के सामने खड़े रहते हैं हाथ जोड़कर, लेकिन ये ऐसे भक्त हैं जो भगवान को कंट्रोल करते हैं, भगवान को नियंत्रित करते हैं, भगवान को डांट पड़ती है और भगवान हाथ जोड़कर वहां खड़े रहते हैं, तो भगवान को अच्छा लगता है, ये सब नाम अच्छा लगता है। एक आचार्य कहते हैं कि वृंदावन में भगवान को गोपियां भाव में कभी गाली भी दे देती हैं, कालिया कहती हैं, अलग अलग नाम लेती हैं भगवान का, तो वो जो गोपियों का डांटना है, गोपियों की गाली है, भगवान कहते हैं कि ये वेदों की जो स्तुतियां हैं, हमारे लिए वेदों की स्तुतियां कही गई हैं, ये स्तुतियों से कहीं सुंदर ये गोपियों का जो वाक्य, कठोर वाक्य है, वो मुझे सुंदर लगता है सुनने में। वेदों की स्तुतियों से ज्यादा कहीं सुंदर भगवान को गोपियों का स्तुति लगता है, जो उनको गाली देती हैं, उनको डांटती हैं, उनको फटकारती हैं, एक गिलास छाछ नहीं देती हैं, कई सारे ताना सुनाती हैं, तो गोपियों का जो ताना है, व्यंग है, वो भगवान को बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदुनाम निजनाथानाम योगमाया समाधिसन। भगवान अपि यद्यपि वो भगवान श्री कृष्ण है लेकिन फिर भी विश्वात्मा है, सबके परमात्मा है, समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं, सबके सुख दुख को जानते हैं। और यदुनाम निजनाथानाम, मुख्य रूप से यदुओं के नाथ हैं, यदुओं के रक्षक हैं, यदुवंश में आए हैं भगवान, और यदुओं के कष्ट को भगवान समझ रहे हैं कि यदुओं बहुत बड़ा कष्ट है, संकट है, कंस का, जरासंध का, ये सब के अत्याचार से ये लोग बहुत भयभीत हैं, ये सब भगवान जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में समस्त जीवों के अंदर वास करते हैं, समस्त जीवों के हृदय में वास करते हैं और सबके सुख दुख की अनुभूति करते हैं। यदुनाम निजनाथानाम योगमाया समाधिसन। कंस के आक्रमण से अपन निज भक्त यदुओं के कष्ट से निवृत्ति के लिए भगवान योग माया का आह्वान करते हैं और योग माया को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? आज का श्लोक है गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपी अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यांश कंस संविघ्नः विवरेषु वसन्तिः। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, भगवान ने योग माया का आह्वान किया। भगवान ने योग माया का आह्वान क्यों किया? क्यों? क्योंकि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भगवान अपि स्वयं भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन फिर भी लीला करना है, तो विश्वात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय के अंदर बैठे हैं, यदुओं के हृदय के अंदर भी बैठे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि यदुओं बहुत बड़ा संकट है, कष्ट है, उस कष्ट से निवृत्ति उनकी कैसे होगी, इसलिए भगवान ने योग माया को आह्वान किया और इसके बाद योग माया का आदेश दिया। क्या आदेश दे रहे हैं? गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, हे देवी, हे समस्त जगत की पूज्या। अभी आगे के दो श्लोक बाद जब पढ़ेंगे तो भगवान अभी तो आज के श्लोक में भेज रहे हैं और इसके बाद भगवान कुछ उनको काम करने के लिए देंगे और भगवान उनको कहते हैं कि यदि तुम इस कार्य को संपन्न कर दोगी तो संसार में तुम्हारी पूजा होगी, बहुत पूजा होगी। क्यों? क्योंकि हमारे आशीर्वाद से तुम सबकी मनोकामना को तुरंत पूरा कर दोगी और तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी शरण में लोग जाएंगे, तुम सबकी मनोकामना को पूर्ण कर दोगी, यथाशीघ्र पूर्ण कर दोगी, इसलिए संसार वाले तुम्हारी बहुत पूजा करेंगे। तो यही भविष्यवाणी भगवान यहां पर कर रहे हैं। गच्छ देवी, देवी मतलब हे समस्त जगत की पूज्या, आप पूजित तो होंगी। भद्रे, हे समस्त जीवों का कल्याण करने वाली। गच्छ ब्रजम, आप कहां जाओ? ब्रज में जाओ। और ब्रज का विशेषण कैसे दे रहे हैं? गोप गोभी अलंकृतम, जहां पर गाय रहती हैं, जहां पर गोप रहते हैं, जहां पर गोपियां रहती हैं, और अलंकृतम जो कि अलंकारों से सुसज्जित रहते हैं, सजे रहते हैं। गोप गोभी अलंकृतम, बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक जगह और कहा गया है वृंदावन की महिमा के विषय में, यही श्लोक का भाव है, गोप गोपी गवासेव्यम पोड़िया द्रित तिड़ विरूढ़म। ये प्रसंग है अध्याय शायद 18 में है, जहां पर कंस के अत्याचार से जब कई सारे असुर गोकुल में भेज रहे और उसके बाद वो लोग अपना जगह चेंज करना चाहते हैं, उपनंद नंद महाराज का मीटिंग हुआ और वो लोग अभी व्रज में जाना चाहते हैं, तो वहां पर व्रज की विशेषता का वर्णन करते हुए श्लोक आया है जहां पर कह रहे हैं गोप गोपी गवा सेव्यम पोड़िया द्रित तिड़ विरुणम, कि जो वृंदावन है, व्रज है, कैसा है? गोप गोपी गवा सेव्यम, जो गायों से, गोपियों से और गोप से सेवित भूमि है जहां पर ये निवास करते हैं, और पुड़िया द्रित तिड़ विरुड़म, और ये भूमि, ये ब्रज सारी सुविधाओं से युक्त है, गायों के लिए पर्याप्त चारा है, पर्याप्त जगह है, पर्याप्त भोजन है। कितनी कितनी गौवें थी ब्रजवासियों के पास, अकेले नंद बाबा के पास कितनी गायें थी? 9 लाख गायें थी। और 9 लाख गायों के लिए सिर्फ नंद बाबा राजा हैं, सबसे ज्यादा इनके पास गाय थी और उसी अनुपात में सब ब्रजवासियों के पास गायें थी। तो गाय रखने के लिए उतना चारा गाय होना चाहिए, उतनी संपन्नता होनी चाहिए, अर्थात उतनी संपन्न भूमि थी वो। और गायें थी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक स्वस्थ सामाजिक विकास के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं। यदि व्यक्ति के पास कुछ गायें हो, थोड़ा खेती हो, दो चीजें गायें हो और खेती हो, तो एक सुंदर सुव्यवस्थित समाज की संरचना की जा सकती है और लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं। गाय जिससे हमको शरीर को स्वस्थ प्रदान करने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो दूध में विद्यमान है, यदि हमको अच्छे से दूध मिले तो हम दूध पी सकते हैं। गायों के ईंधन से, गायों के गोबर से हमको ईंधन मिल सकता है जिससे कि हम खाना पका सकते हैं, और दूध से अन्य कई सारे पदार्थ बना सकते हैं, घी है, रसगुल्ला है, रसमलाई है, स्वीट है, कई सारे स्वीट बनाकर हम रोजगार व्यवसाय कर सकते हैं और इस प्रकार एक स्वस्थ सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए। और ये मिल, फैक्ट्री, कारखाना, नट बोल्ट का जीवन से हम एक सुव्यवस्थित समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो बहुत जरूरी अंग है। और ऐसा ही व्रज का स्थिति था, सब लोग सुसंपन्न थे, इतनी इतनी गायें थी, उनके लिए चारा पर्याप्त था और गायों की सेवा करके गोपिकाओं का मेन व्यवसाय यही था, दूध मक्खन, हाँ इसका व्यवसाय करते थे और इसका व्यवसाय करके बड़े संपन्न रहते थे। और ऐसा कहा भी जाता था कि पहले के दिनों में, आज तो लोगों का बंगला, गाड़ी, मकान देखा जाता है, कितना बड़ा गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, यदि कहीं शादी विदा करना हो, शादी विवाह करना हो तो आज घर देखा जाता है, गाड़ी देखा जाता है, उनका आर्थिक महीने का सैलरी देखा जाता है। लेकिन पहले के समय में, आज से लगभग 25-30 साल पहले भी आप जाएंगे तो यदि कोई बाप अपनी बेटी का शादी करना चाहता है और घर पे जाकर देखता था तो पहले यह देखा जाता था कि घर पे कितने खूटे बने हैं, खूटा समझ रहे हैं, जिसमें गाय को बांधा जाता है। तो खूटा मतलब कितनी गाय बांधा जाना, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, जैसे आजकल जिसके घर में जितनी गाड़ियां खड़ी हैं तो उतना बड़ा आदमी है। तो पहले के समय में जितना घर पर गाय हैं, बैल हैं, उनके पास 2 जोड़ी बैल है, उनके पास 3 जोड़ी बैल है, ऐसा गांव में होता था। बैल मतलब बैल को रखना इतना आसान बात नहीं होता था, क्योंकि बैल बहुत खाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो 3-4 जोड़ी उनके पास बैल है तो होता था कि बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति हैं वो, क्योंकि 3-4 जोड़ी बैल उनके यहाँ चलता है, क्योंकि प्राय सभी किसानों के पास बैल नहीं होते थे। तो जो संपन्न किसान होते थे तो खेती करने के लिए उस धनी किसान के पास जाकर उनका बैल उनसे उधार लेते थे कि थोड़ा खेती करने के लिए उनको बैल दे दीजिए, तो 4-5 जोड़ी बैल रख के वो संपन्नता से पालन करते थे। तो वहां पर खुशी खुशी लड़की का शादी किया जाता है कि बड़े संपन्न है ये, हाँ। और आज संपन्नता देखा जाता है कि तो पहले खेती देखा जाता था, प्रपा जी बोलते थोड़ा खेती हो और गाय हो, तो पहले शादी विवाह में यही देखा जाता था, कितना खेत है और कितनी गाय, भैंस या बैल है, ये देखकर शादी कर दिया जाता था कि हमारी बेटी संपन्नता से सुख में परिवार में जीवन जी सकती है। और पहले गांव में चीटिंग भी होता था, क्योंकि ये अनुभूति है कि जब गांव वाले आते थे और होता है कि किसी भी विधि से यदि कन्यादान किसी का हो जाए, झूठ बोल के भी शादी किसी का हो जाए तो करा देना चाहिए, वो पाप नहीं है, वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। यदि किसी पिता की जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए बेटी का शादी करना है तो वहाँ झूठ उठ चलता है थोड़ा, तो इसका पालन भी होता था। शादियों में जब व्यक्ति जाते थे देखने के लिए लड़के के घर पर, तो घर पे तो देख लिया जाता था कितने गाय हैं, कितने खूटे हैं और ये सब देखकर फिर शाम को खेती में घूमने जाते थे, कितना खेती है। तो जब खेती दिखाने वाले जाते थे गांव में तो गांव के जो घर के जो मुखिया होते थे ऐसे ही बोलते थे, क्योंकि प्लाट होता था प्लाट का, तो वैसे ही बोलते थे, ये देख रहे हैं ना यहाँ से जो चालू हो रहा है यहाँ तक ये पूरा सब अपना ही है, तो उसमें कितने लोग का खेत है पता नहीं, लेकिन सब अपना जोड़ देते थे। और गांव भी होता था ठीक है शादी हो जाने तो बाद में पता चलेगा कितना खेत है। तो इस प्रकार ये सब परंपराएं जीवित थी, आज से 30-35 साल पहले भी घर में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे ये सब चीजें हो जाती थी, लेकिन समय बहुत तेज बदल गया और गाय बैल खेती से हट के आज सभी लोग सिटी में आ गए, और सिटी में हम लोग आकर सुखमय जीवन देख रहे हैं। और बड़ी विचित्र मानसिकता है, लोग बॉम्बे में आकर, बॉम्बे जैसे सिटी में आकर लोग कैसा कैसा जीवन जीते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, और गांव में जमीन है, जायदाद है, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अगर कैसा भी नौकरी करते हैं, कैसा भी जीवन जीते हैं, और उनको लगता है कि बड़ा शालीनता का जीवन जी रहे हैं, बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं कि हम सिटी में हैं, हम बॉम्बे में हैं। बस बॉम्बे में है मतलब लाइफ ठीक है, लड़का कहाँ है, बॉम्बे में है, बॉम्बे में रह के क्या कर रहा है पता नहीं, तो बस ये सब दिखावा का जीवन चल रहा है। तो अपनी प्राचीन संस्कृति को खोकर हम लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रज की महिमा का, ब्रज की विशेषता बता रहे हैं। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभी अलंकृतम, जो कि गायों से, गोपों से और गोपियों से अलंकृत है, सब लोग सुव्यवस्थित हैं और सबके लिए सारी सुविधाएं वहां पर सुसंपन्न ब्रज है। वहां पर जाओ और वहां पर जाकर रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, रोहिणी वसुदेवस्य, रोहिणी जो वसुदेव की भार्या है, उनकी पत्नी है, नंद गोकुले, नंद महाराज राजा है गोकुल के और उनके राज्य में वो निवास कर रही है, उनके घर में निवास कर रही है। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, इस शब्द की टीका पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारा दर्शन टीका में बोलते हैं, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, वहां पर रोहिणी रह रही है, नंद बाबा के राज्य में, नंद बाबा के महल में रह रही है। तो इस श्लोक के आशा में बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नंद गोकुले रोहिण्यास्ते इति षड गर्भ बधानंतरम रोहिण्या अपि जातम गर्भ आलक्ष्यम रहसि वसुदेव नैव सह प्रेषितः कंसा संविघ्नः भीता विवरेषु रहस्य स्थलेषु। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसी यहां पर क्लियर कर रहे हैं, नंद गोकुले रहुण्यास्ते, कि उस नंद गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास कर रही है, नंद गोकुले रहुण्यास्ते निवास कर रही है। बहुत क्लियर पॉइंट कर रहे हैं यहां पर, इति षड गर्भ बधानंतरम रोहिण्या। तो प्रश्न उठता है कि रोहिणी तो वसुदेव की पत्नी है, तो ये नंद बाबा के महल में क्या कर रही है, वहां पर क्यों गई है, और वहां पर जाकर क्या करना है, रोहिणी का उनसे क्या संबंध है योग माया का। तो इस चीज का क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्या बोल रहे हैं, इति षड गर्भ बधानंतरम रोहिण्या, कि जब देवकी के 6 पुत्रों का वध हो गया, वध होने के अनंतर, अनंतर मतलब पश्चात, रोहिणी देवकी के षड गर्भ का वध होने के पश्चात, अपि जातम गर्भ आलक्ष्यम रहसि वसुदेव नैव, देवकी के 6 पुत्रों का वध होने के पश्चात, अपि जातम गर्भ आलक्ष्यम रहसि वसुदेव नैव, वसुदेव जी ने देखा कि रोहिणी भी अभी गर्भ से है, अर्थात रोहिणी भी मथुरा में वसुदेव के पास कभी कभी मिलने जाती थी, रहती थी कुछ दिन के लिए। 6 पुत्रों का वध हो गया था, इधर 7वां पुत्र देवकी के गर्भ में आने वाला था या आ चुका था, और उसके साथ ही वसुदेव ने देखा कि रोहिणी भी गर्भ से है, रोहिणी के गर्भ में भी संतान आ चुकी है, ये भी गर्भ से है। ये लक्षण देखने के पश्चात वसुदेव नैव, वसुदेव ने क्या किया, साप्रेषिता कंसान सविघ्नः भीतः विवरेषु रहस्य स्थलेषु। तो वसुदेव जी ने रोहिणी जी के गर्भ में भी ये लक्षण देखा, लक्षण देखने के बाद कंस के भय से भयभीत होकर उन्होंने क्या किया, एक गुप्त रास्ते से अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के, विश्वसनीय मित्रों के सहारे गुप्त रास्ते से रोहिणी को गोकुल भेज दिया, नंद बाबा के पास भेज दिया उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि यदि यहां रहेगी तो कंस इनका भी वध कर सकता है, इसका भी वध कर सकता है। तो वसुदेव जी भयभीत हो गए थे, इसलिए वसुदेव जी ने प्लानिंग करके, कि बहुत बुद्धिमान थे और बहुत दक्ष थे। ये पता चल सकता है कि ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि वसुदेव तो जेल में बंद थे, उन्होंने कैसे इतना बड़ा प्लानिंग किया कि रोहिणी को इस अवस्था में कंस के महल से निकालकर ब्रज में भेज दिए। तो वसुदेव जी बहुत दक्ष थे, बहुत कुशल थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने जब कंस ने पूतना को आदेश दिया था कि जाओ और जो भी बच्चे अभी पैदा हुए हैं कुछ दिन का उनका वध कर दो, तो ये खबर भी गुप्त रूप से नंद बाबा के पास वसुदेव जी ने भेज दिया था। और ये गुप्तचर से बात, क्योंकि नंद बाबा तो वहां पर नंद उत्सव मना रहे थे, वहां तो बहुत खुशी में थे और ये नंद उत्सव बहुत दिन तक चलने वाला था, लेकिन वसुदेव के दूत से प्राप्त सूचना के अनुसार जब वो आकर एकांत में मिला और मिलकर बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है वहां पर, ऐसा कंस ने आदेश दिया है और ऐसा ऐसा घटना घट रहा है, इसके बाद वसुदेव ने ये, नंद बाबा ने ये योजना बनाई कि चलो हम चल के पहले उसको कर दे देते हैं, और ज्यादा कर लेकर गए क्योंकि कंस की बुरी दृष्टि ब्रज तक न पहुंचने पाए। तो यहां तक भी सूचना वसुदेव जी ने नंद बाबा के पास पहुंचा दिया था, क्योंकि ये बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे वसुदेव जी, इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनकी राजनीतिक बुद्धि का ही कमाल था कि देवकी को उन्होंने कंस के हाथ से बचा लिया था, कंस से छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर कंस के हाथ से देवकी को उन्होंने बचाया था। जब वो प्रवचन पढ़ेंगे आप, जो प्रवचन उन्होंने कंस को दिया है देवकी के प्राणों की रक्षा के लिए, तो वहां पर उनकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है। तो इस प्रकार उन्होंने रोहिणी को नंद बाबा के महल, नंद बाबा के ब्रज, नंद बाबा के घर गोकुल में भेज दिया। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यांश कंस संविघ्नः विवरेषु वसन्ति। और भी कई सारी पत्नियां थी वसुदेव जी की, जो कि कंस के भय से वहां पे रह रही थी, और कई कई पत्नियां अलग अलग जगह पे रह रही थी। वसुदेव की कई सारी पत्नियां थी, जिसमें से रोहिणी जो थी वो नंद बाबा के पास गोकुल में निवास कर रही थी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप वहां पर जाओ, और जाने के बाद अभी क्या काम करना है, अब इस काम का प्रसंग हम आगे के श्लोकों में सुनेंगे कि भगवान को क्या आदेश देंगे करने के लिए, तुमको जाकर करना क्या है। अभी तक आज के श्लोक में यही है कि भगवान आज योग माया को भेज रहे हैं गोकुल में, अब जाकर वहां पर क्या करना है रोहिणी के साथ में, इस प्रसंग की चर्चा आप आगे के श्लोकों में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।